ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 18 जनवरी 2026 के लिए है। विषय जीवन, स्वर्णपथ, रोमियो। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। उत्तरदायी ध्यान, नीति वचन। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरुण जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रगट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रगट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यूहन्ना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। मरकस। जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, और उसने ये कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो ठीक होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वो कह रहा था, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वो उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गए, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कोमी, जिसका अर्थ ये है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने न पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। यूहन्ना। फरीसियों में निकोदीमस नाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदिमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। योहन्ना, परमेश्वर ने कहा, योहन्ना, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना दोबारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरुण इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। सत्य के अनुयायी होने के नाते हम बाइबल के प्रेरित वचन को अनंत जीवन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शक के रूप में लेते हैं। मूल ग्रंथों से परिचित होना और मानवीय मान्यताओं को छोड़ने की इच्छा पुरुषों के सबसे खराब जुनून द्वारा पदानुक्रम और उकसाने वाली मान्यताओं द्वारा स्थापित किया गया, वो क्रिश्चियन साइंस को समझने के लिए रास्ता खोलते हैं और बाइबल को जीवन का चार्ट बनाते हैं, जहां सत्य के संरक्षण और उपचार धाराओं को इंगित किया गया है। वो जिस पर प्रभु का बाजू प्रगत हुआ है, वो हमारे समाचार पर विश्वास करेगा और पुनर्जन्म के साथ जीवन की नवीनता में उठेगा। ये जीवन अनंत है, यीशु कहते हैं, है नहीं होगा, और फिर वो अपने पिता और स्वयं के वर्तमान ज्ञान के रूप में अनंत जीवन को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है प्रेम, सत्य और जीवन का ज्ञान, और अनंत जीवन ये है वो तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। धर्माग्रंथ कहते हैं इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जिंदा रहेगा। ये दिखाता है कि सत्य ही इंसान का असल जीवन है, लेकिन इंसान इस शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाने पर एतराज करते हैं। हम ईश्वरीय तत्व मीमांसा की समझ में अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करके सत्य और प्रेम के नक्शे कदम पर चलते हैं। मसीही धर्म सच्ची चिकित्सा का आधार है, जो कुछ मानव विचार के निहेस्वर्थ प्रेम के अनुरूप रखता है वो सीधे दिव्य शक्ति प्राप्त करता है। मुझे लीन में मिस्टर क्लार्क से मिलने के लिए बुलाया गया था, जो 6 महीने तक कूल्हे की बीमारी के साथ अपने बिस्तर तक ही सीमित थे, जो कि लकड़ी के बड़े स्पाइक पर गिरने से हुआ था। जब वो एक लड़का था, घर में प्रवेश करने पर मैं उनके चिकित्सक से मिला, जिन्होंने कहा कि मरीज मर रहा था। चिकित्सक ने कूल्हे पर अल्सर की जांच की थी और कहा कि हड्डी कई इंच तक फैली हुई थी। उन्होंने मुझे जांच भी दिखाई जिसमें हड्डी की इस स्थिति के प्रमाण थे। तब डॉक्टर बाहर गए। मिस्टर क्लार्क अपनी आंखों के साथ सिथर और दृष्टिहीन थे। मौत की औस उसके माथे पर थी। मैं उसके बिस्तर के पास चला गया। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदल गया। उसकी मृत्यु पालक ने एक प्राकृतिक रंग को जगा दी। पलकें धीरे से बंद हो गईं और सांस लेना स्वाभाविक हो गया। वो सो रहा था। लगभग 10 मिनट में उसने आंखें खोलीं और कहा, मैं एक नए आदमी की तरह महसूस कर रहा हूँ। मेरी पीड़ा पूरी तरह से दूर हो गई है। ये घटना दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच हुई। मैंने उसे कहा कि उठो, कपड़े पहनो और अपने परिवार के साथ खाना खाओ। उसने वैसा ही किया। अगले दिन मैंने उसे आंगन में देखा। तब से मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे बताया गया कि वो 2 हफ्ते में काम पर चला गया। घाव रसना बंद हो गया और घाव ठीक हो गया। बचपन में चोट लगने के बाद से ही बीमारी थी। उसके ठीक होने के बाद मुझे बताया गया कि उसके डॉक्टर ने उसे ठीक करने का दावा किया है और उसकी माँ को पागलखाने में कैद करने की धमकी दी गई है, क्योंकि उसने कहा था उसे ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान और वो औरत ही थी। मैं उस रिपोर्ट की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उस आदमी के लिए जो देखा और किया और उसके डॉक्टर ने इस केस के बारे में जो कहा, वो ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने बताया है। ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि जिसे सत्य जीवन की आध्यात्मिक प्रमाणों से नष्ट कर देता है, और इससे पता चलता है कि मृत्यु के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु पर क्रिया नहीं है। दुखों का आदमी भावतिक जीवन और बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता और सभी साम्यवशी ईश्वर की ताकतवर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। ये मन की चिकित्सा या क्रिश्चियन साइंस के 2 मुख्य बिंदु थे जिन्होंने उसे प्रेम से शास्त्र किया। ईश्वर की सर्वोच्च संसारिक प्रतिनिधि ईश्वरी शक्ति को प्रतिबिंबित करने की मानवीय क्षमता की बात करते हुए केवल अपने युग के लिए नहीं बल्कि सभी युगों के लिए अपने शिष्यों से कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो करेगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है वो सीधा और संकीर्ण है। ये मास के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद। निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। यीशु ने वास्तव में कहा, जो कोई है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा, अर्थात वो जो जीवन के सच्चे विचार को मानता है वो मृत्यु में अपना विश्वास खो देता है। जिसके पास भलाई का सच्चा विचार है वो बुराई के सभी अर्थों को खो देता है, और इस कारण से आत्मा की शाश्वत वास्तविकताओं में प्रवेश किया जा रहा है। ऐसा मनुष्य जीवन में रहता है, वो जीवन जो शरीर को सहायक जीवन के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए प्राप्त होता है, अपने स्वयं के अमर विचार को प्रकट करता है। कुलसियों अध्याय 3 चंड 4 में पौलुस कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगत होगा दिखाई देगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगत किए दिखाई दिए जाओगे। जब आध्यात्मिक अस्तित्व को उसकी पूर्णता, निरंतरता और शक्ति में समझा जाता है, तब मनुष्य ईश्वर की छवि में पाया जाएगा। प्रेरितिक शब्दों का पूर्ण अर्थ ये है, तब मनुष्य उसकी समानता में पिता के सम्मान परिपूर्ण, जीवन में अविनाशी, ईश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ पाया जाएगा। दिव्य प्रेम में सत्य के साथ, जहां मानवीय भावना ने मनुष्य को नहीं देखा है। मैंने क्रिश्चियन साइंस और बीमारियों के इलाज में इसके इस्तेमाल को वैसे ही बताया है जैसे मैंने उन्हें खोजा है। मैंने मन से दिखाया है कि मनुष्यों की सेहत, लंबी उम्र और नैतिकता पर सच का क्या असर होता है, और मुझे पुरानी या नई प्रणालियों में ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर मैं अपनी राय बना सकूं, सिवाय हमारे महान गुरु की शिक्षाओं और प्रदर्शनों और पैगंबरों और धर्मदूतों के जीवन के। बाइबल ही मेरी एकमात्र जानकारी रही है। सच के सीधे और साकार्य रास्ते पर मुझे कोई और मार्गदर्शक नहीं मिला। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के सने को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।